ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण
निर्वाण प्रकरण सर्ग 79। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब बृहस्पति ने कच्छ को उत्तम उपदेश किया तब कच्छ उसे सुनकर स्वरूप में स्थित हुआ और जीवन मुक्त होकर विचरा। हे रामचंद्र जी, जैसे कच्छ जीवन मुक्त होकर विचरा और निर अहंकार हुआ, वैसे ही तुम भी निष्काम होकर विचरो और केवल अद्वैत पद को प्राप्त हो, जो निर्मल और शुद्ध है, जिसमें अद्वैत या द्वैत कुछ नहीं, तुम उसी पद में स्थित हो। तुम में दुख कोई नहीं, तुम आत्मा हो और तुम में अहंकार नहीं। तुम ग्रहण या त्याग किसका करो? जो पदार्थ हो ही नहीं तो ग्रहण या त्याग किसका हो? हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश में फूल नहीं तो उसका ग्रहण क्या और त्याग क्या, वैसे ही आत्मा में अहंकार नहीं। जो ज्ञानवान पुरुष है वे अहंकार का ग्रहण और त्याग नहीं करते। मूर्ख को एक आत्मा में नाना आकार दिखते हैं, इससे किसी का शोक करता है और कहीं हर्ष करता है। तुम कैसे दुख का नाश चाहते हो? दुख तो तुम में है ही नहीं, तुम कैसे उसका नाश करने को समर्थ हुए हो? जो कुछ आकार भासित होते हैं वह सब मिथ्या है, पर उनमें जो अधिष्ठान है वह सत है। मूर्ख मिथ्या करके सत की रक्षा करते हैं कि मेरे दुख नष्ट हो। राम जी बोले, हे भगवान, तुम्हारे प्रसाद से मैं तृप्त हुआ हूं और तुम्हारे वचन रूपी अमृत से अघा गया हूं। जैसे पपीहा एक बूंद को चाहता है और मेघ कृपा करके उस पर वर्षा करके उसको तृप्त करता है, वैसे ही मैं तुम्हारी शरण में आया था और तुम्हारे दर्शन की इच्छा बूंद की नहीं करता था, पर तुमने कृपा करके ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा की। उस वर्षा से मैं अघा गया हूं, अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ हूं। मेरे तीनों ताप मिट गए हैं और कोई वासना मुझ में नहीं रही। तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को सुनकर मेरा जी नहीं भरता, जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर किरणों से तृप्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से मैं तृप्त नहीं होता। इससे एक प्रश्न करता हो उसका उत्तर कृपा करके दीजिए। हे भगवान, मिथ्या क्या है और सत क्या है जिसकी रक्षा करते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस पर एक आख्यान है सो कहता हूं, जिसके सुनने से हंसी आवेगी। आकाश में एक शून्य वन है और उसमें एक मूर्ख बालक है जो आप मिथ्या है और सत्य के रखने की इच्छा करता है कि मैं इनकी रक्षा करूंगा। अधिष्ठान जो सत्य है उसको वह नहीं जानता, मूर्खता करके दुख पाता और जानता है कि यह आकाश है, मैं भी आकाश हूं, मेरा आकाश है और मैं आकाश की रक्षा करूंगा। ऐसे विचार कर उसने एक दृढ़ ग्रह इस अभिप्राय से बनाया कि इसके द्वारा मैं आकाश की रक्षा करूंगा। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार करके उसने ग्रह की बहुत बनावट की। वह जो किसी जगह से टूटता फूटता तो वह उसे फिर बना लेता। जब कुछ काल इस प्रकार बीता तो वह ग्रह गिर पड़ा। तब वह रुदन करने लगा कि हाय मेरा आकाश नष्ट हो गया। जैसे एक ऋतु व्यतीत हो और दूसरी आवे, वैसे ही काल पाकर वह ग्रह गिर गया, तो उसके उपरांत उसने कुवा बनवाया और कहने लगा कि यह न गिरेगा, क्योंकि मैं इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कुएं को बनाकर उसने सुख माना। जब कुछ काल बीता तो जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिरता है, वैसे ही वह कुआं भी गिर पड़ा। तब वह बड़े शोक को प्राप्त हुआ कि मेरा आकाश गिर पड़ा और नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। ऐसे शोक से जब कुछ काल बीता तब उसने खाई बनवाई, जैसे अनाज रखने के लिए बनाते हैं, और कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहां जाएगा, मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसी खाई बनाकर उसने बहुत सुख माना और अति प्रसन्न हुआ। पर जब कुछ काल पाकर वह खाई भी टूट पड़ी, क्योंकि उपजी वस्तु का विनाश होना अवश्य है, तो फिर वह रुदन करने लगा कि मेरा आकाश नष्ट हो गया। जब कुछ काल शोक में बीता तब उसने एक घट बनाया और घटाकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल में वह घट भी जब नष्ट हो गया तब उसने एक कुंड बनवाया और कुंडाकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल के उपरांत कुंड भी नष्ट हो गया, तब शोकवान हो उसने एक हवेली बनाई और कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहां जाएगा, मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसा विचार कर वह बड़े हर्ष को प्राप्त हुआ। पर जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह हवेली भी गिर पड़ी। तब वह दुख को प्राप्त हो कहने लगा कि हाय हाय मेरा आकाश नष्ट हो गया और मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। हे रामचंद्र जी, आत्मा और आकाश के ज्ञान बिना वह मूर्ख बालक इसी प्रकार दुख पाता रहा। जो अपने यथार्थ रूप को जानता और आकाश को भी ज्यों का त्यों जानता तो यह कष्ट काहे को पाता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह मिथ्या पुरुष कौन था जिसकी रक्षा करता था? वह आकाश क्या था और जो ग्रह कूप आदि बनाता था सो क्या थे? यह आप प्रकट करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मिथ्या पुरुष तो अहंकार है जो संवेदन के चेतने से उपजा है। आकाश चिदाकाश है, उसे वह उपजा जानता है कि मैं आकाश की रक्षा करूं, और ग्रह घट आदि जो कहे सो विविध देह है, उनमें आत्मा अधिष्ठान है। उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा वह मूर्खता से करता है और अपने को नहीं जानता कि मेरा स्वरूप क्या है। उस अपने स्वरूप को न जानने से वह दुख पाता है। आप मिथ्या है और मिथ्या होकर आकाश को कल्पित कर रखने की इच्छा करता है, अर्थात देह से देही के रखने की इच्छा करता है कि वह जीता रहे। पर देह तो काल से उपजा है, फिर देह के नष्ट होने से शोकवान होता है और अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता, जिसका नाश कदापि नहीं होता। ऐसे विचार से रहित होकर जीव क्लेश पाता है। हे रामचंद्र जी, जिससे भ्रम उपजा है वह अधिष्ठान असत नहीं होता। सबका अपना आप आत्मा है, उसका भी नाश नहीं होता। उसमें मूर्खता से अहंकार आदि संसार की जीव कल्पना करता है। अहंकार, मन, जीव, बुद्धि, चित्त, माया, प्रकृति और दृश्य आदि सब इसके नाम है, पर मिथ्या है, इनका अत्यंत अभाव है। यह न होता ही उदय हुआ है और क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्ण और गृहस्थ आदि आश्रम मनुष्य, देवता, दैत्य इत्यादि की कल्पना करता है। हे रामचंद्र जी, यह कभी हुआ ही नहीं, न होगा और न किसी काल में किसी को है। यह केवल अविचार से सिद्ध है और विचार किए से नहीं रहता। जैसे रस्सी के अज्ञान से जीव सर्प की कल्पना करता है और जानने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से अहंकार उदय हुआ है। तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, जो प्रकाश रूप, निर्मल, विद्या विद्या के कार्यों से रहित चैतन्य मात्र और निर्विकल्प है। वह ज्यों का त्यों स्थित है, अद्वैत है, परिणाम को कभी नहीं प्राप्त होता, आत्म तत्व मात्र है। उसमें संसार और अहंकार कैसे हो? सम्यक दर्शी को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता और असम्यक दर्शी को संसार भासित होता है। वह पदार्थों को सत जानता है, संसार को वास्तव जानता है और अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जिसके जानने से अहंकार नष्ट हो जाता है, जितनी कुछ आपदा है उनकी खान अहंकार है। सब ताप अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। इसके नष्ट होने पर जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। वह विश्व भी आत्मा का चमत्कार ही है, भिन्न नहीं। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार के तरंग और सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण जो भासित होते हैं, सो वही सागर और सुवर्ण है, उनसे भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं। सुवर्ण परिणाम से भूषण और समुद्र परिणाम से तरंग होता है, पर आत्मा अच्युत है और परिणाम को नहीं प्राप्त होता। इससे वह समुद्र और सुवर्ण से भी विलक्षण है। आत्मा में संवेदन से चमत्कार मात्र विश्व भी आत्म स्वरूप है। वह न कभी जन्मता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, न किसी काल में और न किसी के हाथ से वह मरता है, ज्यों का त्यों ही स्थित है। जन्म मृत्यु तो तब हो जब दूसरा हो। आत्मा तो अद्वैत है, जिसको एक नहीं कह सकते तो दूसरा कहां से हो। इससे प्रत्येक आत्मा अपना अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो, जिसमें सब दुख और ताप नष्ट हो जावे, वह आत्मा शुद्ध और निराकार है। हे रामचंद्र जी, जो निराकार और शुद्ध है, उसे किससे ग्रहण कीजिए, कैसे रक्षा करिए और किसकी सामर्थ्यता है कि उसकी रक्षा करें। जैसे घट के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने पर देही आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और जन्म मरण पुर्यष्टका से भासित होते हैं। जब पुर्यष्टका देह से निकल जाती है तब मृतक दिखता है, और जब पुर्यष्टका से युक्त होता है तब जीवित देख पड़ता है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसका ग्रहण कैसे हो और रक्षा कैसे करिए? स्थूल भी उपदेश के निमित्त कहते हैं। आत्मा तो अनिर्वचनीय है और भाव अभाव रूप संसार से रहित है। वह सबका अनुभव रूप है। उसमें स्थित होकर अहंकार का त्याग करो और अपने स्वरूप प्रत्येक आत्मा में स्थित देखो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार आत्म रूप है। जैसे इसकी उत्पत्ति हुई है वह तुम सुनो। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा में चेतन लक्षण मन रूप से स्थित हुआ है और आगे उसने जगत की कल्पना की है। जैसे समुद्र में तरंग, सुवर्ण में भूषण, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है, वैसे ही आत्मा का विवर्त मन है, पर वह आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जिसको तरंग का ज्ञान है उसको समुद्र बुद्धि नहीं होती, वह तरंग को ही जानता है, वह तरंग को और जानता है। जिसको भूषण का ज्ञान है वह सुवर्ण नहीं जानता, सर्प के ज्ञान से रस्सी को नहीं जानता, वैसे ही नाना प्रकार के विश्व के ज्ञान से जीव परमात्मा को नहीं जानता। जैसे जिस पुरुष ने समुद्र को जाना है कि जल है, उसको तरंग और बुलबुले भी जल ही भासित होते हैं, जल से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। और जिसको रस्सी का ज्ञान हुआ है उसको सर्प बुद्धि नहीं होती, जिसको सुवर्ण का ज्ञान हुआ है उसको भूषण बुद्धि नहीं होती, और जिसको किरणों का ज्ञान हुआ है उसको जल बुद्धि नहीं होती। ऐसा पुरुष निर्विकल्प है। वैसे ही जिस पुरुष को निर्विकल्प आत्मा का ज्ञान हुआ है उसको संसार की भावना नहीं होती, ब्रह्म ही भासित होता है। ऐसा जो मुनीश्वर है वह ज्ञानवान है। हे राघव, मन भी आत्मा से भिन्न नहीं। आदि में परमात्मा से अहम तुम अधिक मन प्रकट हुआ, उसमें जो अहम भाव हुआ वह उत्थान है। बहिर्मुख होने से जीव को अपने निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मस्वरूप का प्रमाद हुआ है और उस प्रमाद से आगे विश्व हुआ है। वास्तव में मन भी कभी उदय नहीं हुआ, आत्मस्वरूप होने के कारण उदय हुए की तरह भासित होता है। हे रामचंद्र जी, मन और संसार सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो दूसरी वस्तु हो तो सत अथवा असत कहिए, पर आत्मा तो अद्वैत ज्यों के त्यों स्थित है और उसका विवर्त मन होकर स्फुरित हुआ है। वही मन कीट है, वही ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा ने मनोराज्य से स्थावर जंगम सृष्टि रची है। वह सृष्टि न सत्य है और न असत्य है। हे रामचंद्र जी, सब प्रपंच मन से रचा है और उसी ने नाना प्रकार के विचार भी रखे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदि सब मन ही के नाम है। जब मन नष्ट हो जावे तब न संसार है और न कोई विकार है। यदि मन दृश्य से मिलकर कहे कि मैं संसार का अंत लू तो कदाचित अंत न पावेगा, क्योंकि संसरण यानी जन्म मरण ही संसार है, तो फिर संसरण संयुक्त संसार का अंत कहा। अंत लेने वाला वाणी से आगे उठकर देखता है। जैसे कोई पुरुष दौड़ता जाए और कहे कि मैं अपनी परछाई का अंत लूं कि कहां तक जाती है। तो हे राम, जब तक वह पुरुष चला जाएगा तब तक परछाई का अंत नहीं होगा, और जब ठहर जाएगा तब परछाई का अंत हो जाएगा। वैसे ही जब तक वासना है तब तक संसार का अंत नहीं होता, और जब वासना नष्ट हो जाती है तब संसार का भी अंत हो जाता है, और आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है और संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। परंतु जो स्फूर्ति संयुक्त देखेगा तो संसार ही भासित होगा। इससे ही रामचंद्र जी, जिस पदार्थ को मन देखता है वह पदार्थ पहले कोई नहीं, चित्त के चेतने से उदय होता है। जब चित्त चेता कि यह पदार्थ है तब आगे पदार्थ होगा। चित्त यदि स्फूर्ति या वासना से रहित होकर देखे तो कोई पदार्थ नहीं भासित होता, केवल शांत पद है। हे रामचंद्र जी, तुम अहंकार का त्याग करके इस नाना प्रकार की कल्पना से रहित निर्विकल्प ब्रह्म पद में स्थित हो जाओ।
हरि ओम, हरि ओम, ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।